ಸಮೇತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಶ್ರೀ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಪಾದಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನಂದ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಳೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ತೋ ಆಪ್ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಸುಂದರ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಹುಆಜ್ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧರಿ ಲಾಲ್ ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ಕು ಸ್ಥಾಪನಾ ಅಭಿಷೇಕ ನಾಮಕರಣ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೈ ನಾ ಆಪ್ಕಾ ತೋ ಜೋ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಯೇ ಶುಭ ಅವಸರ ಪರ ಆಪ್ ಲೋಕ ಆಜ್ ಉತ್ಸವ ಮೇ ಯಹಾಂ ಏಕತ್ರಿತ ಹುಏ ಹೈ ಲಗಭಗ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ರ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ अभिषेक अपने छप्पन भोग अर्पण हो चुका है। तो ये कलियुग में जिसे सांसारिक बद्ध जीव को उतारने के लिए उद्धार पाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, इस कलियुग के लक्षण वर्णन करते हुए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो वस्मिन जुगे जना मंदस मंद मतय हो मंद भाग्य ही उपद्रता। बोलते जिस युग में हम रहते हैं, जिस समय में जो कलि युग है, उसमें अन्य युग के तरह जैसे सत्य युग में लाखों साल जीते थे लोग, तृतीया में 10,000 साल जीते थे आयु था, द्वापर में 1,000 साल हुआ, हमारे हाथ में 100 साल लगा है और वो भी पूरा नहीं होता। एक तो आयु कम है, तो इसलिए हम ना तो हम लोग सत्य युग की तरह तपस्या कर सकते हैं, समय नहीं हमारे पास, ना तृतीय युग में यज्ञ जैसा वो कर सकते हैं, सामग्री के अभाव, और द्वापर युग की तरह उपासना आराधना भी नहीं कर सकते। तो इस कलियुग के लिए उपाय जो पूछे, बोले कम समय है और जितना समय है 100 साल वो भी नहीं पूरा होता, तो किस किस का समय लंबा होता है, 100 साल तक जीते उनके क्या होगा ना, जो परमा जिसके पास समय भी है, ऐसे तो बोलते हैं 100 साल आधा तो सोने में बीतता है, कितने बचपना में बीतता है, कितने बुढ़ापा में बीतता है ना, सोने में तो 50% जाता ही है, कुछ नहीं कर पाते हैं डेड बॉडी की तरह, बाकी बचपन में बाला अवस्था क्रीड़ा सकता खेलकूद में जाता है, उसके बाद किशोर अवस्था आता है, किशोर अवस्था किशोरी रखता लड़के के पीछे भाग के चला गया वो जिंदगी, बाकी जो बीच के समय रह गया वो मेंटेनेंस में फंसे, बाकी बूढ़े हो गए चिंताग्रस्ता, बूढ़े हमारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये प्रवाद है, ये सब धर्म आचरण करना, गीता भागवत आदि पढ़ना, नाम जाति करना, ये अभी का समय थोड़ी है, वो तो जब सरकार भी रिटायर्ड कर दे, प्राइवेट कंपनी भी रिटायर्ड कर दे, अपने घर वाले भी आपको साइड करके बैठा दे, बोले कोई काम के नहीं, तूने आंख को दिखाई नहीं पड़े, कान को सुना नहीं पड़े, दांत सर निकल जाए, तब बोलेंगे भगवान हमारो भक्ति करेंगे। जब किसी चीज के लिए नालायक हो जाएंगे तब भगवान बोले हम आपके लायक बनेंगे, है ना, इस प्रकार के हमारा योजना है। तो बोलते हैं कि अगर किसी के पास समय भी है तो बोलते हैं कि प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो वस्मिन युगे जना मंद, मंद मतलब आलसी है। बहुत आसान तरीका कलयुग में दिया गया, हरि नाम करो, कोई मेहनत नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता, लेकिन इतने आलसी है इसी काम के लिए, बाकी झगड़ा करने के लिए और दूसरे काम के लिए आटा भिड़ के उठ जाएगा। ये भजन इसे मेहनत नहीं लगे, खर्चा नहीं लगे, आलसी ना, समय नहीं होगा नहीं देखेंगे, इस काम के लिए आलसी, परमार्थ के महा आलसी, जिनके पास समय तो है ही नहीं, जिसके पास समय थोड़ा है वो आलसी करेंगे नहीं, मंद बोले नहीं वो आलसी नहीं है, वो निरालस है, आयु भी है उनका पास, आलसी गुण भी नहीं है, वो थोड़ा प्रम्प्ट है तेज है करने के लिए ना, उसका फिर सुमंद मति, अगर आलसी नहीं बुद्धि खराब है, समझ नहीं आएगा, शास्त्र पढ़ तो नहीं समझे, कुछ दिमाग में नहीं जाता, भैंस के दूध पी कर सब मोटा हो, सब बुद्धिहीन है। बोले नहीं थोड़ा बुद्धि भी है, बुद्धि में तेज है, बुद्धि है तो मंद भाग्य, भाग्य ही खराब, क्या मंद भाग्य है, साधु संग ही नहीं मिलता। सर ऐसे संग में रंग ले रहे हैं, ऐसे जुटे हुए हैं कि कभी जो जीवन के लक्ष्य के लिए जो आवश्यकता हरिभजन कर ही नहीं, ऐसे संग नहीं, ये दुर्भाग्य है। तो ये सारे प्रकार के दुर्भाग्य की एकजुट होकर के कलयुग में आया है। तो बोलते हैं ये सारे तो है लेकिन उसमें भी उपद्रुता, बोलते हैं अगर इसमें भी कोई निकला, कुछ समय भी निकाला, आलसी भी नहीं किया और बुद्धि भी समझ लेता है, जो बोलते हैं पढ़ लेता है समझ लेता है और साधु संघ के पास आ गया, जैसे आप लोग कोई आ रहे हैं वृंदावन से भजन करके तो कर लेते हैं, तब बोलते हैं उपद्रुता, उपद्रुता शरीर व्याधि के मंदिर है, बीमार, पेट खराब है, सर दर्द कर रहा है, बुखार आ रहा है, नाना प्रकार के सारे समय सुजोग बुद्धि वृत्ति होते हुए भी शरीर ही साथ नहीं देगा, उपद्रव करेगा, कर नहीं पाएगा, फिर कैसे हो, इतने प्रकार के जंजाल के साथ रह करके कैसे उद्धार हो सके, इतने आसान भगवान तरीका दिए फिर भी हम इसके लायक नहीं। तो हम जितने पतित हो रहे हैं भगवान भी अपने उपाय को इतने सरल बना रहे हैं, लेकिन इतने सरल उपाय को भी अगर हम ना करेंगे तो फिर भगवान बोलते हद हो गया, मैं क्या कर सकता हूं। अरे भाई मैं आपको उद्धार करने के लिए योजना किया लेकिन आप उद्धार होने के लिए चाहते ही नहीं। कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ होगा तो उसको जगा सकते हैं ना, नहीं जाके शब्द करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, कुछ पानी वानी डालेंगे, वो जग जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति सोया नहीं, सोने का नाटक कर रहा है, अभिनय कर रहा है, तो उसको जगा सकते हैं अपने, साक्षात भगवान गोलोक से आकर नहीं जगा सकते हैं, क्योंकि सोया ही नहीं, वो जगा हुआ है, सोने का नाटक कर रहा है, सोया थोड़ी है, जगा ही हुआ पहले से, जग करके सोने का अभिनय कर रहा है तो उस जगह कैसे। तो इस प्रकार किसी को अगर उद्धार पाने के लिए कोई करे तो पहले सोचेगा कि मैं दुख में हूं, मैं तकलीफ में हूं, तो किसी को हेल्प मांगेगा, कोई इसको सहायता करेगा। भगवान, भगवान के भक्त, भगवान के नाम, भगवान के उपाय जो सब है पूजा, वो उनको सहायता कर सकता, मदद कर सकता है जो मदद के लिए प्रार्थी है। मदद कौन मांगेगा, जो तकलीफ जिसको है। तो हम लोग तो सरासर 24 घंटा से 28 घंटा टेंशन में पड़े हैं, नाना प्रकार के दुख क्लेश जर्जरित हैं, लेकिन स्वीकार नहीं, राजी नहीं ना हम, ठीक है। किसी को ही पूछ लो, अभी भी जो बैठे किसी को पूछ लो, भाई कैसे हैं आप, ठीक है, हम ओके, सीधा बोले कि मैंने स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, रो रहा होगा लेकिन फिर भी दान दिखा देगा, वो क्या करे, स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार नहीं कि मैं दुखी भी हूं, तो भाई तू दुखी नहीं है तो सुखी कौन करेगा, तो ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं शास्त्र में, सबसे पहले तैयार हो जाओ, अपने आप को सही बताओ कि मैं दुखी हूं, ये बात तो कहो। क्यों, हमारा दुख क्या है? हमको समझ में नहीं आ रहा दुख क्या है। हम लोग का बुद्धि इतने डल हो चुका है, हमको पता नहीं चलता है दुख क्या है ना। हमेशा दुख में रहते हैं, वो दुख के बीच में थोड़ा थोड़ा छलक सुख आता है, तो उसी को बोलता हूं सुखी है। कोई व्यक्ति आपको एक 50 किलो का बोझा दे देगा, बोला उसको उठा के ले जाओ, आपने अपना संपत्ति है, तो उठा के जा रहे हैं, बड़े दर्द कर रहा है सर, सर दर्द हो रहे, क्या करूं, बड़ा परेशानी हूं इतने बड़े बोझा। तो प्रार्थना किया भगवान को, बाकी भक्त लोगों को, थोड़ा मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है सर। तो बोझा उतार दो, नहीं नहीं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो तो चाहिए लेकिन वो थोड़ा दर्द कम कर दो। किस लिए प्रार्थना करते हैं, थोड़ा परेशान हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको पेन कम कर दो, उपाय बता दो। हाँ बताओ प्लीज। तो बोले सर से उठा कंधा में धर दो। तो उठा के यहाँ ले आए। ओह सो नाइस, क्या रिलीफ हो गया, बिल्कुल दर्द चला गया। दर्द चला गया बोल करके सो नाइस कहते कहते कंधा टूटने लगा, फिर रोने लगा, अरे परेशानी हो गया क्या, न कंधा में दर्द हुआ। फिर प्रार्थना करेगा क्या, न बस यही समस्या, केवल दर्द हटने से मैं सुखी हो जाऊंगा, हटा के इस कंधा में कर दो, ठीक हो गया, फिर इधर शुरू हो गया। ठीक इसी प्रकार हम भौतिक संसारी जितने लोग हैं, हमेशा सोचते हैं बस ठीक तो है, केवल ये मुकदमा लग रहा है, ये केस फैसला हो जाए बाकी ठीक है, केवल ये नौकरी लग जाए, ये काम हो जाए, ये हो जाए सुखी। वो कभी नहीं होगा, ये हो जाए तब भी जैसे, वो हो जाए तब भी जैसे, रोता ही रहेगा, कभी रोना बंद हुआ ही नहीं। इस रोना और उस रोना के बीच में जो 2-4 मिनट के फर्क, उसको हो सो नाइस सो हैप्पी, इसी को सुख मानते हैं। और ये सुख नहीं है, दुख का दूसरे दुख आने में जो अंतर है वही है, सुख तो है नहीं ना, सुख क्या हम जानते ही नहीं परिभाषा उसका। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप मानो कि अब दुखी हो, ना कैसे मान लो, तो भगवान कहते हैं आपके पास 4 ही समस्या में दे रखा हूं दुख के लिए, तो उसको झेल लिया, नहीं मानता। बोले क्या समस्या, भगवान बोलते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये 4 समस्या, चाहे आप दिल्ली में रहो, चाहे आप कोई और कोई गांव में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे राष्ट्रपति बनो, चाहे राजा बनो, चाहे प्रजा बनो, कुछ भी बनो, कोई बच सकता है इससे? कौन बोलेगा ना मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, कौन बोलेगा बीमारी नहीं पड़ूंगा, सबको तो है ना ये 4 दोष। तो ये 4 प्रकार की दोष जो दुख है समस्या है, उसी को सोचो, बार बार सोचो अनुदर्शनम, कि मेरे पास ये समस्या है, जब तक वो समस्या समाधान नहीं हो तो सुख किसे, सुखी नहीं। तो सबसे पहले हम अपने आपको एडमिट करें कि प्रभु मैं दुखी हूं, आपकी कृपा की आवश्यकता है, तब जाकर हम प्रार्थना करेंगे। पहले तो हम एडमिट ही नहीं करते, मानते नहीं कि हम ये करेंगे, सरासर मान देते नहीं, ठीक है। तो पहले मान्यता करें कि हम दुखी हैं, तो फिर उपाय बता दिया जाता है। दुखी तो है, हम जो बताएं सो कर पाएंगे, हाँ सो कर लूंगा, कोई सामर्थ्य भी नहीं, वो भी मानना पड़ेगा कि मैं दुखी भी हूं, सुख प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताएंगे वो भी मेरे लायक नहीं, कर नहीं पाऊंगा। जो सामर्थ्य बताया गया किसी में नहीं लायक है, हर प्रकार से कलयुग का लक्षण बता दिया। तो फिर भी इसी प्रकार के हिसाब से अगर भगवान को प्रार्थना करे कि मैं शक्तिहीन भी हूं, बुद्धिहीन भी हूं, भाग्यहीन भी हूं, सारे दुख में जर्जरित हूं, अब आप कुछ उपाय करो, केवल इस प्रकार प्रार्थना ही हम कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में है क्या चीज, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा जो स्थिति है कलयुग में लाचार, मान लेना चाहे हम लाचार है, चार है, तो भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या प्रार्थना करें पता नहीं, कैसे प्रार्थना करना होता है, क्या करना होता है वो भी नहीं आता है हमको, तो बोलते कुछ नहीं मेरा नाम पुकारो, बड़ी आसान है। केवल जहां तहां बैठ करके, उठ करके, सो करके, ताली बजा करके, म्यूजिक बजा करके, किसी भी कीमत से उनके नाम लो। बस इसी से ही अगर सही भाव लेकर के भगवान का नाम लेते हैं, भगवान मैं दुखी हूं, आपके दरबार में आया हूं, कुछ नहीं, प्रार्थना करना भी नहीं आता, बस आपके नाम ही लेता हूं, बस, तो भगवान अपने तरफ से एक व्रत लेते हैं, जिसे आप कभी कभी व्रत कर लेते हैं, आज एकादशी है, आज हमने अन्न नहीं खाएंगे, उपवास करना एकादशी का व्रत है हरिवासर में, लेकिन उपवास तो क्या करें, उपवास तो उपवास स्वयं शर्मा जाता है, एकादशी व्रत भी बोलता है कि स्कंद के हाथ डिवोटी के हाथ में तुम फेल, क्या वो फास्टिंग के नाम पर तो महाफिस्टिंग कर लेते हैं, अरे नहीं अन्न नहीं खाएंगे, अन्न अन्न को छोड़ो ना, फलाहार में 108 आइटम, एकादशी बोलेगा मैं क्या करूं, मैं बोलेगा तो खान पान सुधर जाएगा, अन्न नहीं होगा तो खाएगा नहीं, फल खाएगा, फलाहार में ऐसे ऐसे आइटम बनाते हैं 108 आइटम, अब एकादशी तिथि क्या करेगी, बोले फिर तो ठीक है, अगर पूरा व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं भाई, सजला सफला जैसे भी करो, अगर जैसे हम व्रत करते हैं कम से कम शाम तक फीस्ट तो खाते हैं दबा करके 56 आइटम, लेकिन अन्न उस दिन माने नोटिफाइड अन्न नहीं खाते हैं, बाकी अनोटिफाइड अन्न तो खूब खाते हैं, ग्रस रूप में अन्न जैसे मान्यता हमारा मान्यता है उसको नहीं खाते, चलो कम से कम ये तो इतना तो व्रत कर लेते हैं कुछ घंटे तक, तो भगवान अपने तरफ से व्रत लेते हैं, अगर तू कुछ नालायक हो कुछ नहीं कर पाओ, एक बार मेरे सामने आओ, सामने भी नहीं आओ तो मत आओ, कहीं भी रहो, सच्चे मन से दिल खुल करके हाथ उठाकर प्रभु हे राम मैं आपका हूं, बोलिए हे राम मैं आपका हूं, बस कोई अगर इतना सकृत एव प्रपन्नाय तब अस्मि इति जाचते, एक बार भी कोई खोल करके बोल दे हे प्रभु मैं आपका हूं तब अस्मि इति जाचे जाचना करे, तो भगवान राम कहते तो मेरे भी सुन लो तुम्हारा, तब वो मैं बोलूंगा तो आप क्या करेंगे, बोले ददामी अभयम तस्मै सर्वदा एतत् व्रतं मम, बोले तू तो एक बार बोलेगा मैं सदा सर्वदा के लिए जुगपत जितने जुग आने वाला है सदा के लिए आपको अभय वरदान देता हूं सब प्रकार से, ये भगवान की संकल्प वरदान, भगवान के पीछे नहीं हटते हैं, हम बेईमान हटते रहते हैं, भगवान नहीं हटेंगे, लेकिन आप बोलेंगे बात ऐसा है हम तो कई बार प्रणाम करते हैं, थोड़ी कम से कम डिवोटी हैं, जितने बार मंदिर जाते हैं इतने बार ठोकते हैं खड़े दंडवत मारते सीधा है ना, नहीं कई बार करते हैं, लेकिन सही में अगर देखा जाए हम अभी तक प्रणाम किए ही नहीं ना, प्रणाम करने का विधि अगर बताए तो बोले अरे ऐसा क्या पता है ना, भगवान बोलते हैं मैं ज्यादा कुछ तुझे नहीं मांगता हूं, तुझे खाने के लिए अन्न देता हूँ, रहने के लिए भूमि दिया, सांस लेने के लिए वायु दिया, पीने के लिए जल दिया, नहाने के लिए जल दिया, लाइट सूरज लगाया, कोई फ्यूज नहीं उड़ता, पावर फेल नहीं होता, सारे व्यवस्था किया, दिन सब कुछ तेरे लिए किया, मर जाता नहीं तो जी भी नहीं सकता, सारे किया, कोई बिल नहीं भेजता, अभी तो बिल भेजते कोई देने के लिए, बोले तो फिर क्या चाहिए ना, कुछ नहीं कब मुझे देख करके मेरे नाम से प्रणाम कर लो, मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु, मेरा वही चार काम करो बस मेरे पास ले आऊंगा तुझे, तो जीव कहता है तो फिर आपके लिए करूंगा तो ठीक है आपके लिए करूंगा, आपके भक्त बन जाऊंगा, आपके सब हो जाऊंगा, जैसे आजकल कोई ऑफिस में कोई इसी कार्यालय में हम जाते हैं जो ऊपर स्थ कर्मचारी होते हैं कोई नीचे कर्मचारी रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे बल जाते हैं बस के लिए, आपके भक्त बनूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, आपका नाम लूंगा, जो बोलेंगे आपका काम करूंगा, सब बिल्कुल एजिट बन जाते हैं, लेकिन महीना के अंत में मुझे चाहिए। तो भगवान ने जब ये बात कहे मनमोना भवंत भक्तों, उनको ये ध्यान में नहीं था कि मनुष्य इतने चतुर है वो फिर बाद में बिल पकड़ा देगा। तो बिल पकड़ाया, तब भगवान ने बोले थोड़ा एडिट करना पड़ेगा मुझे। क्या न तो करेगा तो सही प्रणाम, लेकिन मैं तेरा दायित्व तभी उठाऊंगा जब प्रणाम मेरे लिए करना है तो मेरे लिए ही करना है, और किसी के लिए नहीं ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं भज, मुझे नमस्कार करना है तो मुले मुझे लिए ही, मेरे लिए ही नमस्कार करो। अभी तक अनेशली आप सब सोचिए जितने बैठे हैं, हम कितनी बार मंदिर में जाकर प्रणाम किए भी है, करते ही रहते हैं। जब प्रणाम करता हम सोचते हैं प्रभु मैं तो आपका हूं, उनका भी हूं, उनका भी हूं, उनका भी हूं, केवल आपका नहीं, आपका भी होगा ऐसे बात नहीं, लेकिन उनका भी हूं, है ना। नहीं सब छोड़ करके ना, इसमें सोचना पड़ेगा अभी टाइम। अभी प्रणाम नहीं किया हम लोग, जितने बार दंडवत मारते हैं सब उनको साइड में रखते हैं, आप भी है हमारा, ये है 50-25 चीजें हैं उसके साथ आपको रख लेते हैं, इसी प्रकार से करते हैं। लेकिन भगवान को तो मैं इसको नहीं लूंगा, मुझे मेरे पास आना है तो फिर मेरे पास आना है, फिर किसी के साथ। हम हमेशा कहते हैं वो भी है, वो भी है, भगवान भी है। ये भी शब्द को हटा करके ही शब्द लगाना पड़ेगा, भगवान को ही प्रणाम करे, भगवान को भी नहीं। हम कहते हैं भगवान को भी प्रणाम करो, नहीं भी नहीं चलता, ही लगाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रणाम माना जाएगा। तो एक बार हम अगर ऐसे बोलेंगे भगवान के लिए मैं आपका हूं, भी लगा कर नहीं ही लगा करके, तब फिर उनका नियम लागू होगा। तो ये करने के लिए सोचना पड़ेगा ना, ये कैसे हमारा सभी इतने सारे हैं, केवल भगवान के लिए देखे नहीं सुने नहीं कुछ बनेगा काम, क्या पता, भरोसा ही नहीं है। सुनते ठीक है चलता, लेकिन सचमुच सब छोड़कर उनके पास काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, भरोसा नहीं होता। अगर हमारा विश्वास हो जाता तो हम कर लेते, विश्वास नहीं होता। क्यों विश्वास नहीं होता? क्योंकि जितने हमने भौतिक द्रव्य है उसके साथ व्यवहार करना हम अच्छे तरह से जानते हैं, उससे क्या सुविधा ले सकते हैं पता है, लेकिन हरिनाम से क्या सुविधा कुछ पता नहीं। मैं हरिनाम करूंगा मुझे आज ही खाना पीना 2 रोटी मिलेगा, 10 रुपया हमसे मिल सकता है, हरिनाम से मिलेगा पता नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों भरोसा नहीं? क्योंकि उनके बारे में जानते नहीं, अनुभव नहीं करते। अगर सोच करके देखा जाए, हम जितने भी यहां बैठे हैं, एक समय था जो हम छोटे बच्चे हुए थे, जन्म हुए थे, जन्म के समय से जिन्होंने हमारे लिए व्यवस्था किया, एडवांस बुकिंग किया, हम जब आए नहीं थे धरती में, तब हम आकर के क्या खाएंगे जो हमारे जन्म देने वाली मां को भी पता नहीं, हम बोल भी नहीं सकते, किसी को पता नहीं है। तो जिसने हमको भेजा उसने व्यवस्था करके भेजा था, एडवांस बुकिंग जब आने से पहले उन्होंने व्यवस्था किया, तो अभी नहीं करेगा क्या? करता तो वही है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, हमारा विश्वास नहीं होता। हम बोलते हैं कि हम ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हम ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, जैसे हमारे बिना सारी दुनिया उलट पलट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन विश्वास ही नहीं होता। विश्वास ना आने का कारण क्योंकि हमारा जो माहौल है, जिनके साथ में रहते हैं उनका विश्वास नहीं, इसलिए हमारा भी भरोसा नहीं। अगर आप लाल चश्मा लगाएंगे यहां बैठेंगे सब लाल लाल दिखाई पड़ेगा, नीला चश्मा देंगे सब नीला नीला दिखाई पड़ेगा। तो जिस प्रकार के संग में रहेंगे, जिस प्रकार माहौल में रहेंगे, इसी प्रकार की भावना और इच्छा आपका बनेगा। तो इसलिए हमारा कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सुधार के लिए बाकी कोई उपाय नहीं रहा, एक ही उपाय रहा, साधुओं की संगत करना है। नहीं तो बाकी कोई हमारा बुद्धिवृत्ति काम नहीं करेगा। इसी से हमारा इच्छा भी बनेगा, इसी से हमारा बुद्धि भी तेज होगा, इसी से हमारा करने का आग्रह भी बढ़ेगा, उत्साह भी बढ़ेगा। तो ले दे करके कभी कभी जब आपको समय सुविधा मिले, सामर्थ्य मिले, इस प्रकार के साधु सम्मेलन सत्संग करना चाहिए, जिसके द्वारा थोड़े थोड़े डोज मिलेगा, है ना। इसे प्यास तेज लग रहा है तो एक ड्रॉपर ला के बोला पी लो उसको, कैसे प्यास बुझ जाएगा, बुझेगा। एक ड्रॉपर में दो ड्रॉप पानी दे बोला पी लो, और पानी नहीं, इतना ही। ठीक इसी प्रकार 5 साल से एक बार कर देंगे सत्संग, है ना। चलो वो भी तो सही, कुछ नहीं तो वो भी भले। तो इस प्रकार के यथासंभव यथासमर्थ, अगर यहाँ नहीं है, जहाँ हो रहा है वहाँ जाइए। तो इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत संस्था है, प्रभुपाद जी उन्होंने सृष्टि किए सारे विश्व में, केवल यही फैसिलिटी देने के लिए सारे लोगों को, जनसाधारण सत्संग का सुविधा पूरे दुनिया में प्रदान करने के लिए ये संस्था बना है। इसका एक अभिमुख यही है, पूरे विश्व में हर जगह में भक्तों की संगत जनसाधारण को प्राप्त हो, उसी संघ का फायदा उठा करके वो अपने जीवन कल्याण करे। इसी के लिए नाना प्रकार की व्यवस्था और जितने भी सारे हरे कृष्ण मंदिर है, जो केंद्र है, उसी का एक मुख्य आवश्यकता आई है टू अवेल आपको सत्संग का सुविधा प्रदान करना। भजन कीर्तन करेंगे, प्रसाद कराएंगे, कथा कहेंगे, वहां थोड़ा सा याद दिलाएंगे, ये करना चाहिए, तो फिर हम सुनकर भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर सुनेंगे, कभी कभी तो याद में आएगा, सोचेंगे। तो ये व्यवस्था किया गया है, इस व्यवस्था का सुविधा को लेकर के हम अगर कभी भी थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे और करने के लिए इच्छा करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक दिन से, नहीं तो जैसे खोए ऐसे रहेंगे। नरक के लिए बुकिंग तो पहले से होकर रखा है, जाएंगे इस रास्ता में। अगर कोई बचना चाहते हैं तो इस प्रकार के व्यवस्था कीजिए, घर में निताई गौर सुंदर हो, राधा गिरधारी हो, कोई विग्रह की रखिए। घर में विग्रह रखेंगे तो सुबह शाम को कम से कम पूजा तो करना पड़ेगा, जो खाएंगे उनको दिखाना तो पड़ेगा, तो थोड़ा सा पाप से दोष से तो बचेंगे, है ना। थोड़ा नियम निष्ठा तो रहना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार की क्रिया को करें, जो करते हैं उनको सपोर्ट करें, जहां जहां होता है वहां जा करके उसका सुविधा भी लें, इस प्रकार करके अपना सुधार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई बोलने का है, कोई प्रश्न है? ओके, प्रभु जी कुछ बोलेंगे।
हरे कृष्ण। कोई किसको प्रश्न है, सुझाव है, पूछिए, आगे आ जाए, निर्भीक होकर पूछिए, हमारा समय देंगे आपको। कृष्णा महाराज जी, बहुत सुंदर क्लास लिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपने एक बात बताई कि जैसे कि कृष्ण ही करना है, कृष्ण भी नहीं करना, तो इसमें थोड़ी सी वो लाइट डाली, क्योंकि इसका ही मतलब भी आ जाता है, कृष्ण ही का मतलब बाकी जैसे हमें सब कुछ छोड़ दें, माता पिता, जैसे जो चीज़ें कार्य हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, क्या सब कुछ छोड़ कर कृष्ण ही करें, तो यार कृष्ण ही कैसे करें? इसी के लिए तो मुझे अभी तक इसी किसी छोड़ सकता हूँ। अगर इसको छूकर के कृष्ण को प्रणाम करेंगे, वो माता पिता को परम सेवा होगा, परिवार के लिए परम सेवा होगा, समाज के लिए होगा, आपके लिए होगा, सभी के लिए परफेक्ट। नहीं तो उनको छोड़ कर उनके पीछे पड़ो तो कुछ भी नहीं करेंगे, झगड़ झगड़ के मरेंगे।
छोड़ के मतलब हयाती मन से छोड़ कर, बाहर से भी छोड़ कर।
बाहर से तो क्या, भगवान ने कंडीशन देखते, मन मना, मन से ही करना पड़ता है, बाकी शरीर तो मरा हुआ है, इसमें क्या फायदा है? करते सर मन से, तो जिसमें नाता जोड़ते मन से ही चलते, मन से ही जोड़ना।
किसके हैं फादर भाई? नहीं तो फिर महाराज पूछेंगे आपको। ठीक है महाराज, बहुत थके हैं, दिन भर महाराज सत्संग कर